ये आकाशवाणी है। अब आप भवतारिणी से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 दिन की ब्रुनेई और सिंगापुर यात्रा पर रवाना होंगे। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ब्रुनेई की पहली यात्रा होगी। प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के निमंत्रण पर बुधवार को सिंगापुर पहुंचेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल किसानों के जीवन में सुधार और उनकी आय बढ़ाने के लिए 14,235 करोड़ रुपए की लागत वाली 7 योजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में कल सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 2,817 करोड़ रुपए की लागत वाली डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए 3,979 करोड़ रुपए की लागत वाली योजना को मंजूरी दी है। ये पहल किसानों को जलवायु परिवर्तन के लिए तैयार करेगी और 2047 तक खाद्य सुरक्षा प्रदान करेगी। सरकार ने 2,291 करोड़ रुपए की लागत से कृषि शिक्षा और प्रबंधन को भी मजबूत करने का निर्णय लिया है। इससे कृषि छात्रों और शोधकर्ताओं को वर्तमान चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी। मंत्रिमंडल ने 1,702 करोड़ रुपए की लागत से पशुधन स्वास्थ्य और उसकी जनसंख्या बढ़ाने की योजना को भी मंजूरी दी। इस निर्णय का उद्देश्य पशुधन और डेयरी से किसानों की आय बढ़ाना है। श्री वैष्णव ने बताया कि मुंबई और इंदौर के बीच 309 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। तेलंगाना में बारिश और बाढ़ के कारण 16 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने वर्षा से प्रभावित खम्मम और सूर्यापेट जिलों का दौरा किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का आग्रह किया। एनडीआरएफ की टीमें बारिश प्रभावित इलाकों में बचाव अभियान चला रही हैं। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों तक कुछ जिलों में मध्यम बारिश की संभावना व्यक्त की है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के कई क्षेत्रों में तेज बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि जो संगठन उद्योग और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करते हैं वे देश के विकास में बड़ा योगदान देते हैं। राष्ट्रपति महाराष्ट्र के कोल्हापुर के वारणा नगर में श्री वारणा महिला सहकारी मल्टी इंडस्ट्री ग्रुप के स्वर्ण जयंती समारोह में बोल रही थीं। केंद्र ने कल 23वें विधि आयोग के गठन को अधिसूचित कर दिया। आयोग का कार्यकाल 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक 3 साल की अवधि के लिए होगा। आयोग में पूर्णकालिक अध्यक्ष और सदस्य सचिव सहित 4 पूर्णकालिक सदस्य होंगे। अबूधाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने कल आधिकारिक तौर पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली अबूधाबी परिसर का उद्घाटन किया। प्रतिष्ठित आईआईटी ब्रांड को संयुक्त अरब अमीरात में स्थापित करना अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग शिक्षा के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। इस अवसर पर कंप्यूटर विज्ञान, इंजीनियरिंग और ऊर्जा इंजीनियरिंग के 52 स्नातक छात्रों के उद्घाटन बैच का स्वागत किया गया। परिसर की स्थापना फरवरी 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान द्वारा अपनाए गए विजन दस्तावेज के एक प्रमुख पहलू को पूरा करता है। ये दस्तावेज दोनों देशों के बीच सहयोग के लिए एक रोडमैप के रूप में काम करता है। स्वीडन की सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी का कहना है कि किशोरों के लिए एक दिन में स्क्रीन के सामने 3 घंटे से अधिक नहीं बिताना चाहिए। एजेंसी ने अपनी नवीनतम सिफारिशों में कहा कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को डिजिटल स्क्रीन से पूरी तरह बचना चाहिए, जबकि किशोरों को अपने दैनिक स्क्रीन समय को अधिकतम 3 घंटे तक सीमित करना चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस पैरालंपिक में पुरूषों की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर सुमित अंतिल को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि लगातार 2 पैरालंपिक स्वर्ण पदक और नया रिकॉर्ड बनाकर सुमित ने चैंपियनों के बीच एक विशेष स्थान हासिल किया है। उन्होंने कहा कि सुमित की उपलब्धि अनगिनत लोगों, खासकर युवाओं को प्रेरित करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह सुमित अंतिल का असाधारण प्रदर्शन था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।